अपने अट्टालिका में बैठी, कोई कहां बैठी, चारों तरफ से कृष्ण को दर्शन कर रही है सब। ये नवेली जब जाने लगी तो उसके साथ ने कहा, देखो तुम मत जाना, तुम घर में बैठी रह, बाहर में जाने से एक काम आता है तुम्हें डरने का, उसका भी कभी नहीं उतरता, तुम मत जा। मगर तेरी बेटी किस लिए जा रही? अरे मैं तुमको मना कर रही, दूसरों का मत देखो अपना देख, तो आप क्यों जा रही हैं? मैं जा रही हूं किंतु तुम यहां पर। उसने कहा कि आप भी जा रही है, तो वो आगे चली गई, ये पीछे से भी चली गई और जाकर के बैठ वहां दरवाजे से आड़ में घुघटती आड़ से उनको देख रही। कृष्ण ने बड़े दूर से उसको देखा, जहां भाव है कृष्ण की नजर जरूर पहुंचेगी, कोई भी हो, यदि कृष्ण के तरफ में थोड़ा सा भी यदि कुछ स्मरण किया कृष्ण उसे छोड़ नहीं। ये जर्थान माम प्रपद्धन से आम तथा भजाम्यम, उनकी यह प्रतिज्ञा है जरूर देख सकता। इसलिए जब गोपी ने देखा भाव में कृष्ण के तरफ में, तो कृष्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने एक बछड़े की पूंछ छू दी और बछड़ा क्या किया, कुछ सावा उतर ही चला जिधर कृष्ण उसको डिरेक्शन पढ़ाता दे रहे, ठीक एकदम उसी दरवाजे पर पहुंच गए कृष्ण। मानो बछड़े को संभालने के लिए दौड़ रहे हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, किंतु उद्देश्य है दूसरा, वो ठीक वहीं पर पहुंच गए। देखा कि वो तो अनमनी थी, इनके तरफ में एकदम सारी चित्त वृत्ति लगा करके एकदम देख कैसा पैदारिन्न गति से चित्त की सारी वृत्तियां अनायास ही कृष्ण के तरफ में लग गई और शुद्ध रूप शरीर की सो गई। कृष्ण ने बंसी बजाते हुए थोड़ी सी बंसी निकाली, उसके कपड़ों को स्पर्श कर दिया और निकट से उनको तरफ में देखकर के फिर बछड़े को उड़ाया और बछड़ा छलांग मारता हुआ चला गया, कृष्ण भी चले गए। किंतु कृष्ण जो गए ऐसे नहीं गए, उसके चित्त को साथ साथ नहीं, उसके मन को उन्होंने लेते गए, लेकर के और चले गए। सारे बछड़े चले गए, कृष्ण चले गए, जंगल के अंदर में अंतरित हो गए, चले गए भीतर। तब तक वही पर खड़ी रही, धूल उड़ती रही, उसको भी देखते रही, बेमन की हो गई और खड़ी एकदम लकड़ी की भांति। अभी लौटना घर में अब होश नहीं रही, फिर वो कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ती समाप्त हो गई उसकी साथ। अरे अभी तक तू खड़ी है, कहा था ना जब वो बड़ा भाई बीच वाला सांप है, काला नाग है, वो यदि किसी को काट लेगा उसका भी इतने होता था, यही तो देखा था, यही हुआ। उसको पकड़ करके झपझोर करके ज्ञान लगाने की चेष्टा की और फिर लौटी लेकर के घर में, कहीं इसका बोल कैसा कराया जाए, कहीं से जाओ घर से दही जल निकालो, निकाल कर समर्थन करो। वो घर ले गई अनमनी थी और एक खंडियाल छाल आई, उसमें रखा था सरसों, उसमें रखा था सरसों, जानते हैं सरसों रखा था, उसी खड़ी को लेकर के उसी में मंदिर लेकर के चला गया। थोड़ी देर पर इसे साथ देखा कि ये घर घर तो नहीं कर सकते, ये तो खतर कर रही है, फिर क्या, अरे ये क्या कर रही है, अरे मैंने सभी मंथन करने के लिए कहा था। अच्छा एक बात कर, उठ उठ उठ, उठ उठाया, जब कुएं से पानी भर रहा है और उसके सिर पर एक घड़ा दिया, उसके ऊपर में एक और घड़ा दिया, उसके ऊपर में एक और छोटा घड़ा दिया और यहाँ पर दो और बाल्टी रस्सी दे दी। कुएं भी बहुत गहरे होते हैं, बड़ी रस्सी लंबी सी दे दी, बड़ी भार, उसमें एक और ढोल लगा दिया, उसको इस हाथ पर दे दिया और इस हाथ में भी खड़े एक रख करके उस पर खड़े दे दिया और दूसरे हाथ में अपना छोटा सा भी बच्चा था उसके गोदी में बैठा, ये इसको लेके जा और पान खा करके जल्दी आ जा। देखा कि इसमें भी तो होता है, वो कुएं के समीप में गई, खड़े को रखा, बच्चे को रखा और पानी भरे भी, और भी भरने वाली बहुत सी किशोरिया थी, वो पानी उसमें से भर रही थी। उसने क्या किया, रस्सी लगा करके कहा खड़े के अंदर में देना चाहिए, तो उसने उसमें फंदा बना करके और बच्चे को ऐसे देख रही है, कृष्ण को देख रही है, चित्त तुम्हारा, और उसके घड़े में फंदा लगा दिया। जब फंदा लगाया, अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, किसी ने कहा इसको भूत लग गया, दूसरे ने कहा भूत नहीं नंद का भूत लगा। इस तरह से ये मनमाना भाव है। माला करते समय हम क्या करते हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, चार बार, अरे वहां पर गिनने का समय है, वो गिन रही थी माला, माला करने के तो ऐसे तन्मय होकर के करना चाहिए, ये मन मना भाव का उदाहरण है, यही सर्वोच्चतम उपदेश गीता का है। नहीं समझते हैं लोग। अब इसको पाने के लिए सर्वधर्मान प्रत्यय, सब धर्म को प्रत्याग करके, जैसे गोपियों ने किया था वैसा कर्मय होकर के करना, यही गीता का है। इसलिए कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, गोपियां मन मनाओ भोज मत चित्ता मत प्राण, वो हमारे प्राण स्वरूप हैं, वो हमारे बिना एक क्षण भी नहीं जा सकते हैं। गोपियां इसलिए जाना, पहले माता पिता को सांत्वना देकर के फिर गोपियों के यहां जाना, ये बच नहीं सकती। अब मरी अब मरी अब मरी, मत क्यों नहीं, मत संदेह। हमने उनसे आते समय कहा था मैं कल आने की चेष्टा करूंगा और नहीं आया तो परसों जरूर आऊंगा। इसलिए वहां पर परसों नाम का एक गांव है, आए और वहां पर एक ग्राम है, बच्चे जितने गांव है ना जितने हैं सब कृष्ण की लीला की स्मृति देते हैं। आए और मैंने आ गया आ गया आ गया, परसों मैंने अभी परसों आएगा। इस तरह से पैगाम, पैगाम मैंने क्या, यहां पर कृष्ण दूध पी रहे हैं, कोई खेलन मन है कोई कुछ है, सब उनके नाम के ऊपर में ये सब रखे हैं। तो ये कृष्ण चंद्र जी हाँ क्या बता रहा, ये नाम बताता गांवों के, जैसे उन्हीं के कृष्ण के ऊपर में ये सब नाम रखे गए हैं उस समय के। तो ये कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि जाओ इनको सांत्वना देना, ये ऐसे उन्नत प्रेम हैं इसलिए मर रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये परसों आएंगे, कल आएंगे नहीं तो परसों, किंतु कल गया परसों गया सरसों गया परसों गया अभी तक नहीं आ रहे, आएंगे जरूर उन्होंने कहा है, तो सत्य संकल्प है, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, इसलिए आएंगे, किंतु अभी नहीं आएंगे जरूर, इसलिए प्राण नहीं निकलते, और इसलिए प्राण नहीं निकलते, यदि वो सुनेंगे आएंगे गोपियां मर गई तो कृष्ण क्या करेंगे, एक सेकंड भी प्राण नहीं धारण कर सकते, इसलिए हम अपना दुख नहीं देखते, हम क्या देखती हैं, कृष्ण कभी दुखी न रहे, कितना बड़ा त्याग है, किससे बढ़कर के कोई त्याग नहीं है, इसलिए मर नहीं रहे। कोई गोपी कहते यदि हम मर जाएं तो हमारे शरीर को समाज वृक्ष में लटका देना, उसी के साथ में हम लटका देना, उसका प्राण जो निकले सूर्य के रस्तियों में जहां पर नंद बाबा का घर है उसके ऊपर में मर रहा है, पानी कहां पवन सरोवर में मिल जाए जहां पर कृष्ण स्नान करते हैं, हवा कहां हो हमारे शरीर के जो वो नंद बाबा के आंगन में उड़ती रहे जो कृष्ण हमारा स्पर्श करते रहे, हमारी मट्टी मिल जाए नंद बाबा के भवन में जहां पर कृष्ण रोज बैठ चलते हैं, इसी तरह से प्रार्थना करते हैं ऐसे गोपियों को तुम सांत्वना देने के लिए। तात्पर्य क्या, तात्पर्य इसका ये ब्रज ये प्रेम की भूमि है, मथुरा ऐश्वर्य की भूमि है, ऐश्वर्य और माधुर्य कहते हैं किसको, इस चीज को समझो, भगवत्ता को ऐश्वर्य कहते हैं, कृष्ण जैसे अलौकिक कार्य करते हैं एक साथ में, अर्जुन को मुख में ब्रह्मांड दिखलाया ये सब ऐश्वर्य है, गोवर्धन को धारण कर दिया ये भी ऐश्वर्य है, एक साथ में कोटि कोटि ब्रह्मांड लोग उनको सौ शुद्धि कर रहे हैं और कृष्ण उनके तरफ में देखते नहीं है, ये सब ऐश्वर्य है। और माधुर्य चीज को कहते हैं ऐश्वर्य रहे और न रहे, न लीला के अनुरूप सब उनकी लीलाएं हों कार्य हों तो इसको कहते हैं मधुर भाव, पुतना को कृष्ण ने मारा ये अलौकिक कार्य है, किंतु गोदी में बैठे हुए दूध पी रहे हैं और जब वो पुतना मर जाए तो ये क्या है, आकाश मार्ग में चलने की इच्छा हुई तृणावर्त अशुभ उनको लेकर के ऊपर गया उसके गले को पकड़ लिया, जब वो मर गया तो कृष्ण ने किसी से लड़ा नहीं, सबसे पहले लड़ाई उनके कंस के ये पहलवानों के साथ में पहले वो लड़े, इसके पहले कभी किसी से लड़े हुए थे, बाल्य लीला करते उसमें कोई मर जाता है असुर अपने अपने कर्मों से वो अलग हो जाता है, ये सप्रज की लीलाएं हैं मधुर लीलाएं। अब चले उद्धव जी मथुरा है, मथुरा के दृष्टि से गोपियां जब ब्रज में थी प्यार कर रही हैं, ब्रजवासी लोग प्यार कर रहे हैं, ये बात होती है। अब उद्धव जी को भेज रहे हैं मथुरा में, यहां के नेत्र से तुम देखो संसार देखे कि प्रेम क्या चीज है गोपियों का, इसलिए भेज रहे हैं। इसलिए मैंने जिस पाठशाला में बैठ करके प्रेम का पाठ पढ़ा था उसमें प्रिंसिपल राधा जी हैं और प्रोफेसर कौन सब हैं, ललिता विशाखा इत्यादि प्रोफेसर है, ये शिक्षक है। तुम उस पाठशाला में जाकर के पढ़ो कुछ दिन तो अढ़ाई अक्षर का प्रेम तुम समझ सकेगा। तुम जब लौट करके आएगा तो प्रेम के संबंध में मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, अभी तुम प्रेम का अधिकारी नहीं है, समझता ही नहीं है तो तुमसे क्या मैं बात करूँ। इसलिए प्रेम की पाठशाला में कुछ सीखने के लिए उन्होंने भेजा, किंतु उद्धव को कहा कि जाओ उनको सांत्वना दे दो क्योंकि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम में तत्व है, तुम उनको समझा सकता है। ऊपर से कहा उद्धव जी को हो सकता है कि कुछ अभिमान हो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, कृष्ण का बहुत मैं प्रेमी हूँ, कृष्ण के बिना एक सेकंड में नहीं रह सकता, ये उनको ये सब भाग है। इसलिए उद्धव जी को दूसरे रूप में कहा कि जाओ वहां पर प्रेम का पाठ पढ़ो। कृष्ण ने कहा कि देखो हमारे पिताजी के चरण छू करके प्रणाम करना, मेरी मैया को प्रणाम करना, कहना कि मैं तुम्हारे लड़के पुत्र कृष्ण का मैं मित्र हूँ सखा हूँ। उद्धव जी साधारण नहीं है, बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के मित्र हैं, उनके सलाहकार और मंत्री हैं, ऐसे उद्धव जी परम बुद्धिमान हैं, उनको भेजा। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं रहूंगा, मैं कैसे वहां रहूं। उन्होंने कहा कि देखो जाओ वहां पर, देखा कि मैं संपूर्ण रूप से वहां हूं, मैं मथुरा में एक अंश में हूं, मैं एक अंश में ही आऊं और सौ भाग में सौ भाग वहां पर जाओ। तो पहले कृष्ण ने कुछ उनसे संदेश भेजे, जाकर के कहना तुम्हारे कहने से उनको सांत्वना नहीं होगी, इसलिए तुम मेरे संदेश लेकर के वो चले। देखिए जिससे कृष्ण जा नहीं रहे हैं, लौट नहीं रहे, उनके हाथों में हाथ मिला करके और चल रहे हैं और रथ सोने का चल रहा है। उद्धव जी ने स्वयं रथ पर बैठ करके रथ चलाना आरम्भ कर, कृष्ण खड़े रह गए, रथ चला गया, धूल भी ओझल हो गई, वहीं के वहीं कृष्ण खड़े रह गए, फिर लौटे। लौटने के बाद में उद्धव जी वहां पर पहुंचे, शाम हो गई, रथ को खड़ा कर दिया, नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा को खबर आई कि वहां से उद्धव नाम का एक लड़का आया है कृष्ण का मित्र, बाहर में आए और उसको बड़े प्रेम के लिए साथ ले जाकर के रखा। देखा जिससे पहले इसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, बैठ जाएगा तो वहां का समाचार पूछूंगा, कन्हैया मेरा कहता है ये पूछूंगा, उनको खिलाएंगे क्या। जब से कृष्ण गए हैं तब से चूल्हे लीपे पोते नहीं है, मकड़ों ने जाल बुन दिया और बर्तन जो है रसोई के और उधे पड़े हुए, वो मांगे नहीं गए, रसोई घर में भी चारों तरफ में मकड़े के जाल लग गए। इस तरह से वैसा है का वचन, किसके लिए रसोई बने जब खाने वाला ही नहीं रहे, इसलिए रसोई सबसे नहीं बने। बड़ी मस्तों से एक ब्राह्मण को कहा, वो जाकर के खीर बना, उसमें भी चीनी नहीं, बिना चीनी का खीर उनको खिलाया और इसके बाद में थोड़ी विश्राम करने के बाद में दोनों बैठे। नंद बाबा कहते हैं कुछ बोलते हैं किंतु बोली नहीं निकलती, जो ही कृष्ण के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं हृदय फट जाता है, गला रुष्ट हो जाता है, आंखें एकदम फट जाता है। बड़ी मुश्किल से कहा, हमारा भैया वसुदेव कहता है वो बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस मारा गया, अपने पापों से मारा गया, उसके पापों ने उसे मार डाला, किसी ने उसे मारा नहीं। हो मेरा कन्हैया कहता है ये पूछना चाहते हैं, गला रुष्ट हो गया, बड़े जोर से रोने लगते, जितना ही उसको बोलना चाहते हैं वो कुछ नहीं बोलते। फिर बात उन्होंने बदली, बात बदलते हैं फिर अब वही पूछना चाहते हैं जो कन्हैया कहता करार एकदम रुष्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में बड़ी मुश्किल से कहा, ओहो कृष्ण कभी हमें स्मरण करता है, स्मर्तिना हमें स्मरण करता है, कृष्ण क्या अपने मित्रों का कभी स्मरण करता है, कभी अपनी मैया का स्मरण करता है, कभी मुझे स्मरण करता है, क्या गोवर्धन को भूल गया, क्या वो यमुना के किनारे को भूल गया, क्या गायों को और बछड़ों को भी भूल गया। ओह मैं जब घर में रहता हूं तो कृष्ण की झिंगुली, कृष्ण की मुरली, कृष्ण के खिलौने मुझे याद देते हैं और मैं रहा नहीं सकता कृष्ण को भूलने के लिए यमुना के किनारे जाता हूँ। वहां पर कृष्ण के सुंदर सुंदर छोटे छोटे पैरों को देख करके, उसमें शंख चक्र उसके जो चिन्ह देख करके मैं अस्थिर हो जाता हूँ, मुझे थार नहीं बनता। वहां से मैं गोवर्धन को जाता हूँ, वो देखता हूँ ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके नीचे उसने लीलाए नहीं थी, उसमें कंदरा कंदराओं में उन्होंने लीला की, उसकी छवि वहां पर पड़ी हुई है। मैं जहां जाता हूं मुझे धैर्य नहीं मिलता। ओहो कृष्ण ने ये 60,000 कितना कितने हाथियों का बल वाले कंस को, चारों को, मूर्ति को क्षण मात्र में उनको गिरा दिया। उन्होंने अगासुर बकासुर और ये सब राक्षसों को खेल के खेल के खेलते ही उनका काम तमाम कर दिया। ओहो ये कृष्ण ये कैसा कैसे उसको हमको ये कहते हुए वो बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला करके बच्चों की भांति रोने लगते। उस हरि ने सोचा कृष्ण ने सच कहा ये बड़े दुखी होंगे, इनको सांत्वना देना है। क्या सांत्वना दूं? नंद बाबा आप मत रोइए, ये कहूं तो किसी का लड़का कोई मर जाए तो कोई सांत्वना देता है, मत रो मत रो। अरे ये लड़का आना जाना है ये प्रभु की हाथ की बात है, इसमें रोने से क्या तुम्हारा लड़का आ जाए। किंतु जो कृष्ण के लिए रो रहा हो, जिनकी आंख से एक बूंद भी यदि आंख कृष्ण के लिए निकलता हो तो ये महान सौभाग्यमान है सभी का। हम लोग इतना सुनते हैं करते हैं भजन करते हैं, कहां कहां हृदय इसलिए परम सौभाग्य वह व्यक्ति है जो कृष्ण का नाम सुनकर उनकी लीला कथाओं को सुनकर के तन्मय होकर के आंखें बरसने लगे, हृदय द्रवित हो जाए। आज इनको लेकर कहा कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर, अनादि स्वयं सबके आदि, सब कारणों के कारण कृष्ण, यहाँ सखीराम इत्यादि सबके अवतारों के भी मूल अवतार स्वयं भगवान कृष्ण। उद्धव जी सोच रहे हैं आज उनको अपना पुत्र मानकर के ये रो रहे हैं, ऐसा सौभाग्य जगत में मैंने कभी देखा नहीं न सुना है, इसलिए उनके मुंह से हठात निकल गए आप दोनों महाभागा हैं, एक ये यशोदा जी और आप, ये ऐसे समस्त कारणों के कारण पर ब्रह्म जिसको ब्रह्मा अपने ध्यान में भी नहीं देखते हैं और उसको तुम लोगों ने अपना पुत्र मान करके आंखों की पलकों की भांति तुम लोगों ने कृष्ण को पुत्री मान करके उनकी सेवा की थी को और अपना पुत्र मान करके उनके लिए रो रहे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यमान को। नंद बाबा सुनते ही उनकी आंखें सूख गई और कहते हैं उनसे बेटा तुमने क्या कहा, तुम बड़े सौभाग्यवान हो, तुमने कृष्ण का समय नहीं किया, कृष्ण जैसी अकल तुमको आई नहीं, मैं देखता हूं कि अभी अकल के दांत तुम्हारे टूटे नहीं, तुमको तनिक भी बुद्धि नहीं हुई। किसको कह रहे हैं? बृहस्पति के शिष्य, कृष्ण के मित्र, परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी पुत्र उद्धव को कह रहे हैं कि तुम नीरा बालक है, अभी दांत नहीं टूटे था। नंद बाबू को कहते हैं क्यों हमको कह रहे हैं? नंद बाबू देखो हमसे जगत में कोई दुर्भागा है? कोई भी दुर्भागा नहीं। तुम कहते हो ये कृष्ण भगवान है, मैं तो सुनता था कि वो मेरा लड़का केवल है और तुमने आकर के बताया कि स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान को भी पा करके मैंने उसे खो दिया, वो हमारे हाथों से निकल करके अब चला गया मथुरा। हमारे अंदर में इतना भी प्रेम होता तो हमें छोड़ करके जाता, कभी अपनी प्रेम भूमि को छोड़ करके कोई जहां पर कोई प्यार करता है उसको छोड़ करके जहां पर कम प्यार मिलता है उसके आदमी नहीं जाता। इसलिए मेरा जैसा दुर्भाग्य इस जगत में किसी ने जन्म नहीं लिया, आगे भी जन्म नहीं ले लिया, फूटो न भविष्य भी, ऐसा दुर्भाग्य मैं और हमारी पत्नी जो होता है। और भी रोने लगे। दौरी कहते हैं है, हमने बहुत गलती, बहुत भारी गलती। सचमुच में ये नंद बाबा जो कह रहे हैं मैं क्या कहूं, यदि कहूं ये तुम दुर्भाग्य हो रो मत तो शास्त्र हमारा मुख बंद कर देते, ऐसा मत हो। जो कृष्ण के लिए एक बुंद भी रोता है उसके समान जगत में कोई सौभाग्यवान नहीं। सचमुच में तो ये बात तो मैंने ठीक कही, किंतु नंद बाबा के तरफ से देखो तो ये ठीक है। नंद बाबा बोले और ये देखो बेटा तुमको मैं बतलाऊं एक बात था, वो कौन दशरथ कैसा उसका प्रेम। बेटा चला गया और उन्होंने कहा हाराम हाराम तीसरी बात मुझसे नहीं निकला, वही पत्नी शरीर को छोड़ दिया, मेरे अंदर में प्रेम कहां। जो मैं सृष्टि के लिए अभी तक मर नहीं गया। कैसे चंद महाप्रभु यही बताते हैं, न प्रेम गंधो की तरह भी नहीं हरऊ सौभाग्य प्रणदानी सौभाग्य भरम प्रकाशित पंथी विलास्यानन अवलोकनम बिना विभक्त जब प्राण पतंग कानम। मछली को प्रेम है, सचमुच में प्रेम है पानी से। पानी से मछली को निकालो, क्या करती है? ये नहीं कहती कि मुझे पानी से प्रेम है, अपने प्राणों को ही छोड़ दी। हाँ, हमारा प्रेम तो ऐसा कृष्ण के प्रति नहीं हुआ, कोटि कोटि जन्मों से कृष्ण से हम दिख रहे हुए हैं, उन्हें भूल रहे हैं और प्राण नहीं निकल जाते। इसलिए प्रेम का गंध भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं जीव हूँ और हा कृष्ण कर रहा हूँ, ये लोगों को दिखलाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आभारी आदमी हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण कर रहा हूँ, आंखों से आंसू गिरा रहा हूँ। सचमुच में प्रेम रहता तो मैं मर जाता। बंसी बिलासा नन अवलोकनम बिना, मैं कृष्ण के बंसी बजाने वाले कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं करा, भी मर नहीं गया। दस महाराज जी पुरस्त राम राम का दर्शन मरे, फिर उनके प्राण नहीं लौटे। इसी प्रकार से मेरे प्रेम कहा। इसलिए नंद बाबा तो बड़ी जोर से उनका जो है ये ठीक कर रहे हैं, इनको क्या करो, इनका प्रेम कैसा है, अथाह अनंत है। हिमालय की सुनते हैं क्योंकि सबसे उनकी 29,027 कितना फुट है, उससे भी बहुत ऊंचा लाखों मील टोपी गांधी पहन करके उसकी देखते हैं कि कितना ऊंचा है, उसकी जड़ में आ रहा। ऐसा देखा 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 करते करते टोपी गिर गई। उद्धव जी की ज्ञान की जो टोपी थी गिर पड़ी। इतना इनका बात करते प्रेम, सचमुच में कृष्ण ने इसीलिए इसको देखने के लिए ये भेजा था। आज मेरा सौभाग्य है इस प्रेम की मूर्ति को बात करने, प्रेम की मूर्ति को देखता जो सुधा जी की तरफ में देखा, जो सुधा जी के भाव को देख करके तन्मय होने बोली, अहो ये तो होती नहीं, इसको ये तो बात भी कर रहे हैं। जो सुधा मां का प्रेम और भी आघात था। ऐसे कहते 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 भोर हो गई। भोर होने के बाद में ये निकले स्नान करने। उस समय उन्होंने देखा क्या, कुछ गोपियां खड़ी हैं। कहाँ खड़ी हैं? नंदगांव में उद्धव क्यारी नाम का एक जगह है, वहीं पर बैठी। जो बयान है उन गोपियों के बदले में उन्हीं का जैसा रूप बना करके माया की मूर्ति उनके घरों में भेजी। वो अपने पतियों के साथ में थे, इसलिए पति लोग समझते थे कि हमारी स्त्रियां तो हमारे घरों में ही है, इसलिए उनके प्रति कोई भी असूया नहीं प्रकाश की, कोई कुछ नहीं बोले। उसमें हमारी स्त्रियां थी और तब से वो घर में लौटी नहीं। उसमें एक दंपाव भी वही पर उद्धव जी पहले पहले उनको देखा, वो क्या बातचीत कर रही हैं? ओह ये किसका रथ के सब नहीं देखता हूँ, देखती हूँ ये रथ किसका, मैं नहीं जानती। ऐसा नहीं, अरे वो क्रूर आया है ना, क्रूर आया है, पहले बार क्रूर आया ले गया हमारे पिया, हम लोगों के पिया। ये दूसरा बार क्यों आया? तो तू नहीं जानती, ये इसलिए आया है, सुनते हैं कि कंस मारा गया है तो उसकी बारहवीं होती है ना, पिंडदान किया जाता है। देखा जी मथुरा में पिंडदान से ले आए, वृंदावन में चलो, इसलिए क्रूर आया है, पिंड ले जाने की। पिंड यहाँ क्या, सभी ब्रजवासी कृष्ण के बीचों में मर गए हैं, इसलिए सहज रूप में उनका जिस पिंड निकलेगा उसको निकाल कर लेकर के कंस का पितृ तर्पण और उसको इसलिए जाएगा। कोई कहती है जैसे बात तो ठीक है, किंतु ये भी बात नहीं, बात यह है अपने मैया बाप को दिखलाने के लिए कि मैं मथुरा का राजा बन गया, मैं एक गरेड़िया की भांति गोपालक था, गैया चराता था, अब मैं राजा नहीं रहा, अब मैं यहाँ पर कंस को मार करके यहाँ पर महाधिराज मथुराधिराज द्वारकाधीश बने हैं। इसलिए उनका नौकर भी आ रहा है सोने के रथ में चढ़ करके, तो वो किस रथ में आएंगे इसी को दिखलाने के लिए, मानो ये नौकर को भेजा है सोने के रथ में। उधर भी कहते हैं है, मैं जानता तो सोने के रथ में चढ़ करके नहीं आता, ये तो बड़ी भारी गलती है, बहुत भारी मैंने गलती। खुद तीन दिनों को क्या है, बड़े लज्जित हो गए, सोचा पत्नी दो खंड हो जाती, मैं इसके अंदर नहीं समा जाता। इतने में एक गोपी ने कहा, ये जानती है कौन है? कृष्ण का कोई अनुचर होगा, मुझे कैसे तुमने समझा? इसलिए समझा ये श्याम तो है माने कृष्ण जैसे ही श्याम ऐसे ही किशोर कृष्ण से दो एक वर्ष छोटे हैं उधर और कृष्ण का जैसा रूप रंग और बड़े मधुर स्वभाव इत्यादि वैसे और कृष्ण ने आते समय अपनी बनमाला पहना दी अपना पीतंबर भी पहना दिया ये कपड़े भी पहना दिए एकदम कृष्ण जैसे ही गोपियां करती हैं कौन गोपियां करती हैं जो एक तमाम वृक्ष को देकर के कृष्ण समझ करके और उनका आलिंगन करती हैं मैं को कृष्ण समझती हैं कोई काले बादल को देकर के कृष्ण समझती हैं और तन्मय हो जाती हैं आज ये गोपियां साक्षात कृष्ण के समान समभाव वाला ऐसे युवक को देकर के भी प्रेम ने उनकी रक्षा की नहीं तो वो कृष्ण समझ करके आलिंगन कर सकती थी जिसे प्रेम उनकी रक्षा करता है मर्यादा प्रेम की भी मर्यादा होती है प्रेम अमर्यादित नहीं होता इसलिए एक गोपी कह रही है देखो श्याम है किंतु श्याम नहीं श्याम अच्छे बटे किंतु श्याम नहीं श्याम है किंतु श्याम नहीं क्या है ये भ्रमर भी श्याम है किंतु श्याम नहीं है तो ये श्याम तो है किंतु श्याम नहीं कौन है श्याम का रूप है कैसे उद्धव जी सुन रहे हैं सब बहुत दूर से कह रहे हैं श्याम नहीं है तो कौन है श्याम का रूप है कैसे समझी देखो आंखें भूल कर सकती हमारे नाके कभी भूल नहीं करेंगी लाख प्रकार का गंध हो बेली जमेली जूई और भी कमल का भी गंध हो उसमें वो पीले पीले वो क्या होते हैं राधा जी के अंग में चंपक चंपक पुष्प हो और बेली के पुष्प हो सभी मिला करके किंतु उसमें कृष्ण का गंध जो होता है वो अलग ही तरह का होता है हम समझ जाएंगे ये कृष्ण के अंग हो कर ये जो आया है ये जो फूल जो पहना है माला है इसमें कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है और ये जो कपड़े पहना है पीतांबर ये इसका नहीं है उन्होंने उचित रूप में इसको जरूर पहना दिया है इसलिए उसके अंगों से ये कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है इससे फूल नहीं हमारी हो धोखा यह धन्य गोपी मैंने नंद बाबा को देख करके मैं आश्चर्य किया ये गोपियां तो उनसे भी दो अंगुल और ऊपर वाली हैं वहां जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और बैठ गया और 5 मिनट बहुत लंबा प्रसंग है मैं केवल एक भूमिका दे रहा हूं अब यदि आऊंगा तो इसको एक दो श्लोकों को इसमें से सुंदर सुंदर आप लोगों को सुनाने की चेष्टा करूंगा इसे सुनने के अधिकारी भी बहुत विरले हैं सुनाने वाले की तो बात नहीं क्या मैं इस समय मैंने अपने गुरु जी से जो कुछ समझा उसका थोड़ा सा कुछ भाग देना चाहता हूं मैं अकेले ही क्यों और साथ करूं आप सब लोगों को भी इस रस का कुछ पिला दूं जैसे कि आप लोगों के जीवन में भी उनके प्रेम के प्रति लालसा एक जग उठे यदि अलसा जब उठी तो हमारा साधन भजन एकदम ठीक है और यदि रोग नहीं हुआ भागवत पढ़ने पर भी कुछ प्रसंगों को सुन तो हमारा जीवन व्यर्थ है इसलिए उद्धव जी वहां पर गए एक गोपी वहां पर थी उन सब गोपियों ने देखा कि एक मूल जो गोपी थी राजा जी भागवत में काश्चित लिखा काश्चित मैंने क्या परोक्ष रूप में कहा मैंने कहा राम इधर आ जाओ किसी लड़के का नाम है एक ये डायरेक्ट कहना है भारत में ऐसे कोई प्रसंग नहीं लिखे गए परोक्ष रूप में कहे गए एक लड़का है गले में वैजयंती माला है पीतांबर पहने है मधुर मधुर वेणु बजाता है वृक्ष तक भी उसे आकर्षित हो जाते हैं बोलो तो ये युवक किशोर कौन है इस तरह से परोक्ष रूप में बतलाया गया जैसे एक व्यक्ति है वो बैठे हुए हैं वो लाल कपड़े पहने हैं लाल उनकी कमीज है और शर्ट पहने हैं केस यहां पर उनके हैं हाथों में घड़ी है और भी उनके लक्षण बतला दिए नाम नहीं था तो ये काश्चित कौन हुए वो व्यक्ति इसी तरह से भागवत में समस्त सारे प्रसंग बतलाए गए हैं बल्कि इसमें अवर इस बोलने में अधिक है इसलिए प्रेम की बात करके घुघट के अंदर नहीं रखना चाहिए वो प्रकाशित करने से प्रेम रूप एकदम अंतरहित हो जाता है इसलिए यहां पर कह रहे हैं वो गोपी कोई सो रही सोने की पुतली कमल के पत्तों पर कमल के फूलों पर तेज बरसी उसके विरह के ताप से वो कमल झुरझुर हो गए चंदन उसको लगाया गया था मोटा मलय मलयगिरी का और वो भी मलय एकदम चूर चूर हो गया, सूख गया। ये गोपी मन ही मन में देख रही है। कृष्ण का अंग मिलन से जो मथुरावासी हैं इनके भाव नेत्र से देख रही हैं, जो वो बिना वो किशोरियों के रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। वो वहां पर एक फूल को छोड़कर के जैसे भ्रमण दूसरे फूल को प्यार करता है, तीसरे को फिर वहां नहीं लौटता है। यहां तक उसका यह भी ज्ञान नहीं आता है ये बिना गंध वाला ये फूल है, ये भी नहीं। इसी तरह से मथुरा में किसी किशोरी से मिलने का ध्यान करती हुई कुछ रोष से वो कुछ बोलने लगी, पूछ करके बड़ी मुश्किल से बैठी और बैठ करके बतला। कृष्ण भौरे बन करके वहां पर पहुंचते हैं कुछ प्रेम का पालन करने के लिए, और उद्धव जी ठीक उसी समय में पहुंचते हैं। कृष्ण उसके पीछे पीछे भौरे का विचार करके वहां पर पहुंचे। राधा जी के चरण कमल ऐसे सुंदर मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने सुगंधित हैं, इतना कोमल है कि मानो समाज जनकृत करता हुआ उनके चरण कमलों में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। मधु के लोग राधा जी ने भाव नेत्र से देखकर कहा, छुओ मत, मधु पकित अबंध हो मार पितांद्री चपतना कुछ भी ललित माला तुम कुमर बात श्रोते न बात मधुपति तन मान नहीं ज्ञान प्रसादम जब सदस विडम दम जब चतुर्थ समय दृष्ट करेंगे रोष भरी नेत्रों से करेंगे। मैंने कहा कि उनको प्राण संचार हो गए, अरे मधु दूर हो दूर अपवित्र होकर के हमारे चरण कमलों को छूने की दृष्टता मत कर। वो कुछ कुछ गुंजार करता हुआ वहीं पर बोल रहा है राधा चरण, अब तुम कह रहा है सामने जी मैंने क्या किया जो मैं अपवित्र हूं। कहते मधु मधु मैंने क्या मधु पान करने वाला मधु कितवा बंधो कितवा बंधो मैंने छलिया का बंधु ठग का बंधु। किसको ठग बतला रही है? मधुपुरी में एक ठग रहता है, उसने मध्य सारा खोल रखी है, मध्य का विराट दुकान उसकी है, होलसेल वहीं से मधु बिकता है, मधु माने मदिरा बिकता है, उसका मालिक मधुपति है, मधुपति माने कृष्ण मधुपति, और तू वहीं से पूर करके आया है, जरूर तुमने मधुपान किया। स्वामी जी कैसे कह रही हैं? मैंने तो मधुपान नहीं किया, जरूर आया, उसका लक्षण तो है ना, क्या किसी को समझाने और संपना देने के लिए आना चाहिए तो वैसा वेश बना करके आना चाहिए। तुमको होश नहीं है, ज्ञान नहीं है, कहां पर कैसी बात करनी चाहिए, कैसे जरूर सुनना चाहिए, पवित्र होकर के आया है, अरे अपने गुल्फों में क्या लगाया वो कौन? मैं स्वामी जी कुछ नहीं लगाया। अरे लगाया नहीं, मैं देखूं ये लाल जैसा रंग लगा हुआ है, ये क्यों? जानते हो मैं बतलाऊं ये कहां से आया? हम लोगों की शौक होने के स्थल में उनके बस्तक स्थल में जो कुमकुम था वो कृष्ण से मिली और वो माला बुझा गई, किंतु उनका जो कुमकुम उसमें आया उसी पर तू बैठा, इसलिए ये तुम्हारे आ गए, और तुम फिर आता है हमारी उद्दीपना करने के लिए, तुम्हें देखकर के मैं रोज शौक होगा, तू यहां से जल्दी लेकर आया। जिसका कुछ ही ऐसा है तो वो कहते होंगे जदुओं की सभा में जब उनको पकड़ेंगे जैसे किसे ये प्रेम करता है उस समय ये जदु लोग उनसे प्रतिशोध लेंगे, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ। अंत में बीच का एक श्लोक करके अपना वक्तव्य समाप्त करता है। मृग विरूप पंद्रम दिव्य देव इस प्रेम कृत विरूपा इसी जीत हकामयानम परिमपम परिमत्वा आवेश यथं शवतजं तद अशत सौख्यम तत्कथान। कहते हैं मृग विरूप पंद्रम स्वामी जी आप हमारे प्रभु की निंदा इतनी करती हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे, उन्होंने कौन सा ऐसा दोष किया है? उन्होंने तो आपको छोड़ा नहीं, आपके प्रति बड़े अनुरक्त हैं, इसलिए उनसे संधि करना है उचित। मैं समझता हूं उनसे संधि के लिए उनसे मतभेद मत कीजिए, वो आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते, तुम्हारे प्रभु का कुछ गुणगान करूं बतलाऊं? देखो उनकी बात छोड़ो, काले नाम के जितने हैं ऐसे ठग सब हैं, धूर्त होते हैं, किसी से प्रेम नहीं करते, सबसे नकली प्रेम करते हैं। ये कालावती का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दू ये पिछले द्वापर में एक काला हुआ था, वो दशरथ जी का पुत्र बन करके आया। उसने कहा मैं बड़ा सारी त्यागी हूं। उसने सबको छोड़ दिया, पिताजी को, मैया को, राज्य को, सबको, भाई को, सब छोड़ दिया। किंतु इतना बड़ा त्यागी कि अपने स्त्री को साथ में ले गया, उसको क्यों ले आया? अरे जब भी साधु बनना है, त्यागी बनना है तो उसे नहीं छोड़, तो उसे तो छोड़ा नहीं, उसे साथ में ले आया। खड़ा बनता था लकड़ी, बड़ा त्यागी, जटाजूट बना दिया। अब धनुष की क्या जरूरत है, जब तुमने सभी कुछ पाया तो धनुष भी था। यहां आकर तो उसने एक बंदर को मारा। ये बंदर कौन? बाली। मृगयु कपिंद्रम दिव्यदे लुब्ध धर्मा। अरे जिस बंदर का मनुष्य आदमी मांस नहीं खाता, जिसे बंजिया तक नहीं मारते, आज उस बंदर को किसने मारा? कौन? कि जो सर्वत्यागी बना हुआ है, किसलिए मारा? कहता है स्त्री जीत, मैं स्त्री जीत हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा व्यक्ति बाली को मारा किसलिए? वो भी पेड़ की आड़ से मारा। मारने के बाद में बाली के पास में ये आए, बोले क्यों हमको मारा? अरे तुम एक कामी, वो एक कामी, उसकी स्त्री हमारे पास में थी और तुम्हारी स्त्री को हरण करके कोई ले गया, मारा क्यों हमें? अरे तुम सीधा साधा हमारे पास में आता, कहता कि हमारी स्त्री खो गई है, गोली करके गया, मैं आराम को पकड़ करके पिताजी के साथ में तुम्हारे यहाँ कर देता हूँ। हमारे कांच के अंदर में बरसों तक पड़ा था, बड़ी मुश्किल से। वो एक बार सूर्य की पूजा कर रहे थे बाली जी, और वो रावण युद्ध करने के आया, युद्ध हम दे, उसने ऐसे पकड़ लिया जैसे मच्छर पकड़ते हैं, यहाँ पर बंद करके, और वो सूर्य को दर्द जब देता है। थोड़ी देर के बाद में कुछ बहुत दिन रहा, इसके बाद में वो दांतों से काटने लगा, नोकों से उनको नोचने लगा। वो भूल गए कि इसके अंदर में कुछ है, उन्होंने देखा जैसे कोई कीड़ा काट रहा है, तो ऐसे ऐसे किया तो उड़ करके भागा रावण। उस रावण को मैं कहता था पकड़ करके ले आता पिताजी को साथ में, कौन सी बड़ी भारी बात है, तुम इसके पास में गए? राम ने कहा देखो हमने इसे मिताली की है, हमने पट्टी जाके हमारी स्त्री को खोज करके लागा, और इसी स्त्री को मैं लौटा हूँ। तो बतलाओ तो ये दोनों कामी, गोपी कह रही है देखो ये दोनों कामी स्त्री, और कहते हैं कि हम स्त्री जीत हैं। अरे सोचो देखो एक त्रुपना खाए अद्भुत राम का रूप देख करके मुग्ध हो गई। अरे क्यों नहीं, जब गिरोही तक मुग्ध हो जाती है, पशु पक्षी सभी मुग्ध हो जाते हैं, तो यह त्रुपनाखा नाम की क्या चीज है, वो तो मुग्ध हो गई। जिसको नहीं करना चाहिए उस बात को उसने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे भाग्या के रूप में मुझे ग्रहण कर लीजिए, मेरी जैसे सुंदर कृष्ण में कोई नहीं है, और आपके जैसा सुंदर कोई विश्व में नहीं है, ये जोड़ी बड़ी अच्छी बैठे। उन्होंने उसका नाक कान काट लिया। क्यों? अरे तुम कहते हो कि मैं सबकी कामना पूर्ण करता हूँ, तो कामना तो पूर्ण कर, उसका नाक कान क्यों काटा? वही कह रही है काला है ना, इसलिए काटा। मैं तो इसे शादी करूंगा नहीं, और संसार में विश्व में कोई भी इसका कुरूप देख करके इसके साथ में शादी नहीं करे, इसलिए काल काट लिया। पहले बताओ ऐसा था कोई और जगत में होगा, ऐसा सुबह कोई होगा, ऐसा कोई नहीं होगा, इसलिए कालों की बात करते। और सुनेगा भ्रम नहीं तो करे, तेरे प्रभु की ऐसी ये काले हैं, उनकी महिमा और कुछ बदलाऊं, इसलिए हमारी संधि उनसे नहीं हो सकती। एक काला और था कहते के सतयुग में, उसने अपना नाम रखा बामन। वो भिक्षा मांगने के लिए गया, कोई कमी नहीं थी, फिर भी भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांग करके क्या कहता है, कहता कि हमको दिन पर खोली दो। उन्होंने कहा ले लो, तो जब देने लगा तो कैसा किया, प्रॉपर उदाहरण एकदम, और तीन पद से सारी पृथ्वी, सारे भूमंडल, यहां तक सप्त लोग तक, पाताल लोग तक सभी ले लिया, तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं, एक से पृथ्वी, दूसरे से समस्त ब्रह्मांड, और तीसरे के लिए जगह मैंने ली। वो बेचारा क्या करता कि हम ही को माप लो, अपने को भी दे दिया, और उसको बांध लिया, और बांध करके गिरा करके नाग पास से कस लिया। वो तो प्रहलाद महाराज ये ब्रह्मा है, अरे ये प्रभु ये क्या कर रहे, इसने सर्वस्व दे दिया और आप इसको बांध रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। तो इस तरह से इनकी बात क्या कहेंगे, ये तो कहते हैं ये काले वाले कौवे हैं, कृष्ण का नाम कहीं नहीं लिया, काला काला सबका नहीं है, कौआ का उपमा दिया, कृष्ण भी काले ये कौआ भी काला। कौआ भी स्त्रियों के सिर से खाने वाली चीजों को लेकर के उनको ठुकराता है, ऐसे ही ये उसी चीज का खाते हैं उसी को ठुकराते हैं, एक फूल से दूसरे इस तरह से तरह तरह की भावनाएं करते हैं, कभी क्रोध से कभी रोष से इन बातों को कहा है। आज समय अधिक हो गया आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, फिर हम कभी आएंगे 6 महीने के बाद में, उस समय में हम लोग चेष्टा करेंगे, उस समय मिलेंगे तो उस समय में केवल इन्हीं 6, 7 या 10, 14 श्लोक हैं इनके ऊपर में कुछ थोड़ी थोड़ी समझने का और व्याख्या करने की चेष्टा करें। आप लोग इसके बाद में हरिनाम कीर्तन करते हुए हम लोग आज का ये समाप्त करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।